ओम शांति। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से जिनको बहुत प्यार है, सरल चित, रूहानियत से भरपूर व्यक्तित्व भी आध्यात्म की ऊर्जा से उत्प्रोत, नित नया चिंतन मंथन कर, अनेक ज्ञान रत्न निकाल कर ब्रह्मा वत्सों तक पहुंचाने वाले आदरणीय राजू भाई जी, जोरदार तालियों से उनके स्वागत करते हैं। आप सब जानते ही होंगे राजू भाई जी को, जानते हैं सब? अच्छा, सब जानते हैं, क्योंकि मुरली से सब परिचित है ना, इसलिए राजू भाई जी को क्या कहते हम, मुरली वाले राजू भाई जी, क्योंकि सब तक मुरली पहुंचती है, ब्राह्मणों का श्वास ही मुरली है। आपका जन्म कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1972 से आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे। आपने सिंधी भाषा सीखकर सन 1976 से हिंदी मुरली टाइप करने की सेवा शुरू की। मुरली में जो सार, वरदान और स्लोगन आदि आते हैं, उसकी सेटिंग आप ही करते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण के साथ साथ टाइप करके शीघ्रातिशीघ्र विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका विशेष योगदान है। आज की डेट की मुरली सारे विश्व में पहुंच जाती है। सतत ज्ञान अध्ययन तथा राजयोग की गहन अनुभूति करने के फलस्वरूप आप अपने क्लासेस प्रवचनों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आपने ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती आदि अनेक पुस्तकें लिखी। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। शाश्वत यौगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियानों का कुशल संचालन किया है। मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि का कार्य भी आपकी देखरेख में ही चल रहा है। मुख्यालय से प्रति मास निकलने वाला पत्र पुष्प आप ही प्रकाशित करते हैं तथा मुख्यालय से दादी जी की तरफ से पत्र व्यवहार भी आप करते हैं। आपके द्वारा किया गया टॉक शो अनमोल रतन प्रतिदिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आपने विश्व भ्रमण करते हुए विश्व के पांचों खंडों यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका तथा एशिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके विश्व स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा विभिन्न रेडियो, टेलीविजन इंटरव्यूज द्वारा ईश्वरीय सेवाओं को गति प्रदान की। और आज के आपके क्लास का विषय ही है कि मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तियां। दो शब्द कहूंगी, रूहानियत के दर्शन होते हैं आपके चेहरे से, ज्ञान की निर्मल धारा बहती है आपकी वाणी से, और प्रकृति भी खुश होती है आपकी सेवा से, और सभा में सम्मानित करते हैं हम बजाकर ताली दोनों हस्तों से, आदरणीय राजू भाई।
ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिमान हम सबके अति प्यारे शिव भोलानाथ बाबा की प्यारी प्यारी संतानों, आज हम सभी विशेष अपनी परम आदरणीय दादी गुलजार जी की विशेष स्मृति में 11 मार्च 2021 शिवरात्रि के महापर्व पर दादी जी अव्यक्त वतनवासी बनी। कल हम सभी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन उसके पहले आज के विषय को लेते हुए मैं दादी जी की कई विशेषताओं पर आपके आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि ड्रामानुसार बहुत बड़ा भाग्य मुझ आत्मा का रहा जो 1973 से 2017 तक बाप दादा का जो पाठ चला अव्यक्त रूप में आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से, उस पाठ में पूरा ही समय बाबा के साथ बैठने का और बाबा के महावाक्य लिखने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। मैं समझता हूं कोई एक भी मुरली, एक भी मिलन और एक घंटे का भी गैप नहीं होगा कि जो हमने बाबा को सन्मुख में न देखा हो। इसलिए उस सर्वशक्तिमान की शक्तियां और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्तियां, दोनों के विषय में आंखों देखा कुछ समाचार आपके आगे रखूंगा। सर्वशक्तिमान शिव बाबा, उनकी पहली रचना ब्रह्मा बाबा, इन दोनों आत्माओं ने दादी के तन को 21 जनवरी 69 को चुना और 21 जनवरी 69 से लेकर के 48 वर्षों तक हम सब की अथक पालना की। आज पूरा ही विश्व, देश और विदेश में जितने भी बच्चे हैं वो सब अव्यक्त पालना से निकले हैं। साकार पालना वाले बहुत थोड़े हैं, गिनती के हैं, और जो हैं वो सब एडवांस पार्टी में चले गए, कुछ एक बचे हैं। आज हमारे बहुत स्नेही जय प्रकाश भाई, जिन्होंने बाबा मम्मा की बहुत पालना ली, 1960 में ज्ञान में आए और 65 वर्षों तक दिन रात अथक बन करके सेवाएं की। सत्कार भवन दिल्ली में रह करके उनका भी अंतिम संस्कार होने जा रहा है। कल उन्होंने 3:30 बजे शरीर छोड़ा था। अभी अभी मैं मैसेज देके उन्हें आया, उनके परिवार को, अपने ईश्वरीय परिवार को। बाबा की पालना लिए हुए साकार के बहुत थोड़े से बच्चे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में इतनी सारी रचना अव्यक्त वतन में रह करके बाबा ने रची, उनकी पालना की। और साकार में गुलजार दादी जी के माध्यम के द्वारा हमें इतना सुंदर ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से, सर्वशक्तियों से श्रृंगार किया। आज जो कुछ हम हैं वो तो बाबा के अव्यक्ति पाठ के आधार से ही हैं। उस अव्यक्ति पाठ में शुरुआत जब हुई, दीदी और दादी निमित्त बनी और बाबा ने एक वायदा किया कि बच्चे बाबा कहीं गए नहीं हैं, सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज की है। जो मधुबन साकार वतन की ड्रेस थी, एड्रेस थी, वो एड्रेस अव्यक्त वतन की बन गई और जो ये मिट्टी की ड्रेस थी वो लाइट की ड्रेस हो गई। लेकिन बच्चे जब भी याद करेंगे, जब भी कोई बात पूछेंगे और जिस तन को निमित्त बनाएंगे उस तन के द्वारा बाबा आएंगे, डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि बाबा कहीं चले गए हैं। दीदी और दादी को बाबा ने ज्ञान कलश यज्ञ का जवाबदारी का कलश दिया और गुलजार दादी जी को अपना माध्यम बनाया। गुलजार दादी इतनी सरल, इतनी हाजी करने वाली दीदी और दादी का कहना और गुलजार दादी का वतन में जाना, चाहे वो दीदी दादी के कमरे में हो, अचानक बोल दे दादी जाओ बाबा के पास संदेश लेकर के आओ, या बाबा को बुला के ले आओ। दादी ये नहीं कहती थी बाबा दादी अभी थोड़े देर के बाद जाएंगे, लेकिन दादी ने कहा चली गई। कौन सी शक्ति थी वो? संकल्पों को ब्रेक देने की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति। हम सब अभ्यास करते हैं योग में, इधर उधर के संकल्प न चले, अपने एक ही श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएं। लेकिन दादी के पास कितनी वंडरफुल शक्ति थी, क्योंकि जब तक अपनी शक्तियों को समेटा नहीं है, संकल्पों की शक्ति की बात कर रहा हूं, संकल्पों की कितनी गति है, कितनी फास्ट संकल्प चलते हैं, दादी की कैसी कंट्रोलिंग पावर थी, कितने सीमित संकल्प वो चलाती थी, वो आप समझ सकते हो। जब दादी कहे गुलजार वतन में जाओ, दादी ऐसे बैठे, एक मिनट दृष्टि दे, चले गए। एक दिन की बात सुनाता हूं। बाबा के घर में पहली एक गाड़ी आई, फियट गाड़ी किसी ने गिफ्ट दिया। मधुबन में उस समय तक गाड़ियां नहीं थी, जो पहले लाए थे कराची से वो तो सब चली गई, लेकिन ये 72 की बात है, एक सेंटर ने मधुबन में गाड़ी गिफ्ट दिया, फियट थी उस समय। तो दीदी दादी उसमें बैठी और गुलजार दादी को कहा तुम बीच में बैठो। भाई जो चलाने वाला था उसको कहा ले चलो बाहर, और माउंट आबू में अनादरा पॉइंट पर जो सनसेट पॉइंट है वहां गाड़ी ले गई। एकांत थी, दिन का समय था, कोई नहीं थे वहां पर, और दादी ने कहा गाड़ी खड़ी करो, इसका उद्घाटन बाबा करेगा। जब तक बाबा उद्घाटन नहीं करेगा तब तक दादियां इस पर नहीं बैठेंगी। गुलजार दादी को गाड़ी में बिठाया और दादी दीदी ने दृष्टि दिया, गुलजार दादी वतन में चली गई और वहीं पर गाड़ी में ही बाबा को बुला लिया। बाबा आए, गुलजार दादी के तन में प्रवेश हुए, दादी दीदी ने दोनों ने उनको हाथ पकड़ के बाहर उतारा बाबा को। बाबा से थोड़ा सा तिलक लगवाया गाड़ी में और बाबा को बोला बाबा बाबा के घर में गाड़ी आई है नई नई, इसका उद्घाटन आपको ही करना है। तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कराए और बोला बच्ची गाड़ियां क्या हैं, अभी तो बहुत बड़ी लाइन लगने वाली है गाड़ियों की। बाबा को समय प्रमाण दादियों ने ऐसे यूज किया जैसे कोई बच्चे को यूज किया जाता है। जब कहा बाबा विदेश में सेवा केंद्र खोलने की बात है, निमंत्रण मिल रहे हैं, आपकी क्या प्रेरणाएं हैं, आप आके डायरेक्शन दे के जाओ, बाबा आ गए। उस समय 71 की बात है, मैं मधुबन में आ गया था, एक मास के लिए आया था, लेकिन बाबा आए और बाबा ने बड़े प्यार से विदेश की सेवा की विधियां क्या होंगी गुलजार दादी जी के माध्यम से सुनाया। एक संकल्प सबका चल रहा था विदेशी कल्चर में वो लोग सवेरे कभी उठते नहीं हैं, ठंडी बहुत होती है इसलिए सवेरे स्नान भी नहीं करते हैं, और उनका खाना पीना शराब नॉन वेज। वहाँ हम ऐसी सेवा बाबा के सनातन धर्म की सेवा देवी देवता बनाने की सेवा कैसे करेंगे? कौन सुनेगा, कौन आएगा? बाबा पहली बार आए और आते ही पूछते हैं, बच्चों के आगे दृष्टि देते, बच्चे जहां तुम जा रहे हो वहां की सेवा की है? तो जवाब क्या होगा? बाबा जाके करेंगे? बाबा कहता है नहीं, जाके तो बाद में करेंगे, लेकिन यहां होते भी एक संकल्प इमर्ज करो कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहां पर बहुत सारे बाबा के छिपे हुए बच्चे हैं, और जाते ही वो बाबा का ज्ञान सुनेंगे, सब नियम पालन करेंगे। बहुत पॉजिटिव संकल्प लेकर के उस धरनी पर जाना, ये नहीं सोचना कौन निकलेगा कौन आएगा। ब्राह्मण आत्माओं के जहां कदम पड़ते हैं वहां पर बाबा के बच्चे न हों, ऐसा नहीं हो सकता। गया गुरु और जाते ही सेवाओं की ऐसी धूम मची। लंदन में एक दो साल दादियां रही, हमारी रतनमयी दादी जी रही, उसके बाद दादी जानकी जी गई। 140 देशों में कैसे बाबा के बच्चे निकले, कितनी मेहनत करके सेवाएं हुई। मेरा दो बार जाना हुआ है लंदन अमेरिका, मैंने देखा कितने बाबा के लगन वाले बच्चे अमृत वेले योग करने के लिए सेंटर पर आते हैं। सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी में आ रहे हैं, भले बर्फ पड़े, ठंडी पड़े, बरसात पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दादी जानकी जी ने इतना विस्तार किया, जो 2 साल जब दादी थी उसके 1 साल पहले लंदन गई थी, 700 भाई बहनों का क्लास था लंदन में। आप सोच सकते हैं भारत के अंदर किसी क्लास में इतने होंगे, कैसी सेवाएं की होंगी। कुछ विदेशी, कुछ देसी भारत के जो वहां विदेश में गए। इस प्रकार से बाबा के गाइडेंस मिले, बाबा ने बहुत दिल से हर दूसरे तीसरे दिन गुलजार दादी के तन में आकर के मार्गदर्शन दिया, पालना दी, शिक्षाओं से सजाया। उस सर्वशक्तिमान की शक्तियों को दादी जी ने अपने तन में समाया। कभी कभी बाबा कहते थे, बच्चे ये दोनों शक्तियां शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कितनी महान शक्तियां हैं, सबसे विश्व की नंबर वन शक्तियां, और जब दादी के तन में आती हैं तो इस तन का क्या हाल होता होगा। लेकिन वो तन में इतनी एनर्जी थी, इतनी शक्ति थी, आज किसी तन में कोई आत्मा थोड़े समय के लिए भी प्रवेश करती है उसके बाद उसका क्या हाल हो जाता है। लेकिन ये परम पवित्र आत्माएं, सर्वशक्तिमान की शक्ति, दादी के तन में 12 घंटे रही, 12-14 घंटे तक भी बैठी, और ज्यों बाबा ऐसे गए वापस, दादी इतनी फास्ट स्पीड से चलने लगती जैसे बैठी नहीं थी, थकी ही नहीं थी, कुछ भी उनको पता ही नहीं है। आज 12-14 घंटा कोई बैठ जाए एक ही स्थान पर, सब खाना पीना, सब बाथरूम सब बंद, और बैठा है बाबा, बात कर रहा है, मिलन मना रहा है, वरदान दे रहा है। एक दिन क्या हुआ, बुधवार का दिन था, बाबा शाम को 6:30 बजे आए, ओम शांति भवन बना था, सुखधाम बन रहा था, तो सुबह गुरुवार के समय, गुरुवार का दिन आ गया, बाबा 8 बजे तक सुबह बैठे थे, शाम को 6 बजे आए हैं, 7:30-8 बजे तक। तो दादी जब विदाई देने आई, दादी विदाई देने आती थी, तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा अभी आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, आप जाएंगे, उसके बाद हाल की सफाई होगी और उसके बाद भोग लगेगा, तो बाबा बड़ा प्यार से मुस्कुराए, कहते बच्चे क्या भोग बनाया है, जो बनाया वो ले आओ अभी खिला दो ना। फिर क्या भोग लगाना है बाद में। तो दादी ने कहा बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात है कि आज सुखधाम का उद्घाटन होना है, 10 बजे का प्रोग्राम रखा है, आप इतनी देर तो बैठे हैं, थोड़ी देर दृष्टि डाल दो सुखधाम पर, क्या दृश्य होगा। वो मैं तो पूरी रात बैठा था बाबा के पास, और बाबा इतना बच्चों का आज्ञाकारी, चलो। और बाबा को गद्दी से उठाया, बाहर लेकर के आए ओम शांति भवन में, वहां से ही दिखाया कि बाबा ये सुखधाम आज उद्घाटन है इसका। बाबा ने दृष्टि डाली, सुखधाम के लिए बहुत सारे वरदान दिए, और बीच में कुछ मजदूरों के घर बने हुए थे, ऐसे नजर डाल के बोला ये क्या है, क्योंकि इधर योग चले, इधर सात्विक वैद बाबा के बच्चे शुद्ध शाकाहारी, और बीच में कोई दूसरे खान पान वाले रहे, तो बाबा ने ऐसे नजर डाली कि वो तो हटने के लिए तैयार ही नहीं थे, इतने अच्छे स्थान पर बैठे थे। लेकिन बड़े प्यार से उनसे बात की गई, उनको घर बना के दिलवाड़ा की तरफ दिए गए, और वो आराम से चले गए, खुशी से चले गए। वहां पर बाल उद्यान बना हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अव्यक्त रूप में कैसे बच्चों के साथ रहे हैं, कैसे एक एक चीज को गाइड किया है, लेकिन उसका माध्यम दादी, गुलजार दादी। गुलजार दादी के लिए बाबा ने एक बार कहा, बच्चे इस तन को बाप दादा ने इतना समय यूज किया, इसकी क्या विशेषताएं हैं। बाबा ने सुनाया कि इस बच्ची ने दो एनर्जी कभी भी व्यर्थ नहीं किया, वही एनर्जी हम सब ज्यादा ही व्यर्थ कर रहे हैं, और वो दो एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है संकल्प की एनर्जी, मनसा की। उन्होंने कभी कितनी भी बड़ी बातें हों, कोई भी बात चल रही हो, क्यों क्या कैसे, इन प्रश्नों में मन की शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाया। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, फुल स्टॉप की मात्रा तो छोटा बच्चा भी लगा सकता है, दादी के पास ही ये बड़ी शक्ति थी, कोई भी बातें करो, कितनी भी बातें करो, उनका विस्तार नहीं किया उन्होंने, फुल स्टॉप। एक सेकेंड में मन की शक्तियों को स्टॉप कर लेना, ये मास्टर सर्वशक्तिमान की सबसे बड़ी शक्ति है। ताली नहीं बजाओ, अपने से पूछो, अगर मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरा सर्वशक्तिमान है, आलमाइटी है, मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो क्या मैं संकल्पों को एक सेकेंड में स्टॉप कर सकता हूं, और हलचल की परिस्थिति में कर सकता हूं। चलो स्टॉप करके देखो, गीत बज रहा है।
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। Thank you. पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
बाबा ने कहा कि इस बच्चे ने अपने ब्रेन की शक्ति को, संकल्प की शक्ति को जमा किया है, कभी भी एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं किए, बुद्धि की एनर्जी भी जमा की है, कहीं भी बुद्धि को इधर उधर चलाया नहीं, भटकाया नहीं, इसलिए भगवान के काम में इस बच्चे के संकल्प की, बुद्धि की एनर्जी काम आ रही है। ब्रेन तो दादी का ही था ना, बाबा तो प्रवेश कर गया उसके द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान। लोग मेरे से कई प्रश्न करते हैं कि साकार मूल्यों में और अव्यक्त मूल्यों में इतना बड़ा अंतर क्यों? साकार ब्रह्मा बाबा तो शास्त्र भी पढ़े हुए थे, साकार ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव थे, उन्होंने बहुत भक्ति की थी, उन्होंने गुरुओं का संग किया था, और शिव बाबा जब उनमें आते थे तो ब्रह्मा बाबा सदा कंबाइंड होते थे, साथ रहते थे, तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा बोल जाते, कभी शिव बाबा बोल जाते, इसलिए साकार वाणियों में कभी कभी ऐसे लगता है कि अभी ये कौन बोल गया। लेकिन अव्यक्त बाप दादा में जब बाप दादा जब आए तो गुलजार दादी का पाठ सुला दिया, आत्मा कहीं नहीं गई लेकिन उनकी स्मृति को मर्ज कर दिया, और बाप दादा उनके तन में प्रवेश होकर के दोनों समान होकर के बात कर रहे हैं, वो संपूर्णता के महावाक्य हैं। इसलिए अव्यक्त वाणियों में बहुत गहराइयां आ गई और लगता है कि एक ही टॉपिक पर बाबा बोल रहे हैं। इतना सुंदर ढंग से बाबा ने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो एक संकल्प की एनर्जी को, दूसरा बोल की एनर्जी को दादी ने सदा बचा के रखा। कभी कभी हम ब्राह्मणों को देखते हैं, बहुत अच्छी हम तपस्या करते हैं, भट्टी करते हैं, इतनी लगन से बैठते हैं, लेकिन अगर हम टोली बांटना शुरू कर दें या भोजन बनाने के लिए भोजन शुरू कर दें खिलाना, क्या होता है? आवाज ही आवाज, आवाज ही आवाज, सब भूल जाता है कि मैं अभी भट्टी में बैठा था। लेकिन हमारी दादी ने कोई भी बात, मुझे याद आता है कि दादी ने एक दिन कहा, बड़ी दादी बहुत ध्यान रखती थी गुलजार दादी का, ज्यादा साइलेंस में रखना भी ठीक नहीं होता, टू मच शांत रहना भी थोड़ा खतरा होता है, तो दादी ने हम लोगों को एक ग्रुप बनाया, पांच छह भाइयों का, दादी के साथ नीलू बहन और एक दो बहनें होती थी, तुम दादी को कहीं ना कहीं बाहर घूमने के लिए ले जाओ, पिकनिक पर ले जाओ, इनको हंसाओ बहलाओ, थोड़ा सा इनको आवाज में लाओ। लेकिन हमने देखा कितना भी आवाज मिलाओ, कभी कहानी सुनाओ, कभी कोई गीत सुनाओ, दादी ऐसे जैसे है ही नहीं यहाँ। कभी भी आवाज में नहीं आई, कभी भी कोई बातों का इतना जवाब नहीं दिया। मैंने एक दिन अचानक कहा, दादी के पास हम योग करने जाते थे कमरे में यहाँ शक्ति भवन में, जो आज बाबा कल कह रहे थे ना प्रकृति की सेवा करो, दादी ने इतनी उम्र में इतनी बीमारी के बीच में एक दिन भी नमाज शाम का योग मिस नहीं किया, 7 से 7:30 एकदम रेगुलर पंचुअल। 7 बजे अगर हम कमरे में गए तो दादी योग में बैठी हुई मिलेगी, और 7 से 7:30 तक सबके साथ हम सब 10-15 लोग बैठ करके योग करते थे। तो एक दिन दादी से ऐसे चिट चैट किया मैंने, हमने कहा दादी एक प्रश्न पूछूं, बोली पूछो क्या पूछना है। दादी बाबा कहता है अंत समय में आप बच्चों के चेहरे से बाबा का साक्षात्कार होगा, आप गुम हो जाएंगे, ये चेहरा बाबा दिखाएगा, बाबा दिखाई देगा इस चेहरे से, जिनके चेहरे से बाबा दिखाई देता है। उस समय दादी बड़ी दादी अव्यक्त हो चुकी थी, जानकी दादी की उम्र 100 साल थी उस समय, और गुलजार दादी को बोला बाबा दादियां को बाबा लिए जा रहा है एडवांस पार्टी में, किसके चेहरे से बाबा दिखाई देगा। मेरा प्रश्न ये था किसके चेहरे से बाबा दिखाई देगा, जिन्होंने चेहरे में बाबा को समा के रखा, जिनके नयनों में बाबा बसा रहा दिन रात, वो तो एडवांस पार्टी में चले गए। अभी बाबा किसके चेहरे से, हमारे चेहरे से दिखाई देगा क्या, आजकल के बहनों से चेहरे से दिखाई देगा, भाइयों के चेहरे से, जो व्यर्थ पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते उनके चेहरे से बाबा दिखाई देगा क्या। तो ऐसे ही मैंने रमणीकता से दादी से हंसते हंसते पूछ लिया, तो पता क्या जवाब देती, एक ही शब्द में जवाब दिया, तुमको क्यों चिंता लगी है, तुमको इसकी चिंता क्यों है। दादी प्रश्न तो उठता है ना, फिकर फिकर नहीं है, चिंता नहीं है, फिर भी संकल्प तो चलता है ना। तो दादी बड़े प्यार से कहती है देखो ये बाबा का यज्ञ है और बाबा के पास चाबी है, साक्षात्कार कराने की चाबी तो उसके पास है ना, अगर बाबा मेरे द्वारा या हमारी दादियों के द्वारा भी कराना होगा तो क्या वतन से इमर्ज करके साक्षात्कार नहीं करा देगा, उन्हीं दादियों से करा देगा, भले वो एडवांस पार्टी में कहीं भी गई। जब अभी भी अव्यक्त वतन में सभी दादियां मिलती हैं और अपने उस संगम के पार्ट में मिलती हैं, जो जन्म हुआ उस पार्ट में नहीं मिलती है कोई आपस में, उनको कौन पहचानेगा। तो बाबा वतन से कोई भी कार्य किसी भी बच्चे के द्वारा करा सकता है, इसलिए ये भी संकल्प करना बंद कर दो। माना दादियों ने कोई संकल्प किया ही नहीं, अपने संकल्पों को इतना ब्रेक, इतना बोल पर कंट्रोल, जो बाबा ने बोल की एनर्जी को कितने घंटों तक प्रयोग किया। एक रात को बाबा का संदेश आया था कि मैं मधुबन वालों से मिलूंगा, स्पेशल मिलूंगा मधुबन निवासियों से, ये बात है 20 मार्च 1988 की। बड़े खुश हो गए हम सभी, और मधुबन में थे हम करीब 40-45 बहनें और 120 भाई, 120-125 भाई, 225 लोग मधुबन निवासी थे। बाबा शाम को आए, मिलना शुरू किया, सवेरे दादी आई कमरे से बाबा को विदाई देने, तो 6:30 बजे थे, 12 घंटे के बाद लास्ट में मैं बाबा के सामने बैठा था मिलने के लिए। तो जब मैं मिल के उठा तो दादी ने मुझे बुलाया अकेले में कोने में, इधर आओ। रात भर बाबा ने क्या किया, बहनें रह गई, केवल तुम 120 भाई रात भर मिले, तो मैंने मुंह से निकला, बाबा ने इतने वरदान दिए आज जो मैंने लिखे हैं, एक एक को एक पेज, दो पेज, तीन पेज बाबा ने वरदान दिए, इतना बोला, इतना लिखा, टाइप करके ले आओ दादी, तो फटाफट करा के अभी ले आओ टाइप करके। आप समझो 120 भाइयों को रात में 7:15 बजे बाबा ने मिलना शुरू किया और सुबह 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक बाबा केवल 120 भाइयों को मिला। आधा घंटा, 15-20 मिनट ऐसे बाबा दृष्टि दे रहा है, टोली दे रहा है, वरदान दे रहा है, कितना बोला होगा। जब मैंने टाइप किया तो इतनी इतनी बड़ी किताब जैसा बन गया। अब दादी मेरे को बोलती, क्या करेगा तुम इसको? दादी जिन भाइयों ने, जिन भाइयों को बाबा ने वरदान दिया है उनको बहुत अच्छे कागज पर टाइप करके मैं दूंगा, उनके फोटो लगे हैं, फोटो छप निकले हैं, अपना फोटो लगाएंगे, बाबा का वरदान लगाएंगे और उसको पढ़ते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। बस दादी ने मेरे को आंख दिखा, क्या बोला? इसके लिए वरदान दिया, तुमको दिया क्या? हाँ दादी हमको दिया। अरे इतने बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार है, बाबा बच्चे एक बच्चे को कहता है लेकिन सबको देता है। इसलिए तुम मुरली के अंदर लिखो, मुरली में लिखो, 4 लाइन में लिखो, जी दादी। अब बाबा सर्वशक्तिमान कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो हमने प्रैक्टिकल आंखों से देखा, और दादी को कैसे इतना नम्रचित, इतना निरहंकारी बनाया, इतना सरल चित बनाया, कभी भी उनको ये नहीं आया कि मैं भगवान का माध्यम हूं, बिल्कुल निरहंकारी। और जब दादी कहती थी जाओ इनको लेके, तो एक पता है एक नाम दिया था, घर की बात सुनाता हूं, दादी ने कहा आप लोगों का ग्रुप है KPM, KPM मतलब खाओ पियो मौज करो, मौज करने के लिए जाओ। तो गुलजार दादी कहती दादी ये शब्द ठीक नहीं है, KPMM, डबल एम माना खाओ पियो मौज करो लेकिन मेडिटेशन करो। तो जहां भी हम सब दादी को लेके जाते थे, कुर्सियां नहीं ले जाते थे, कभी कभी ऐसे ही दरी पर बैठा देते थे। एक बार यहां एक निचला घर है, हम दादी को लेके गए, वहां कोई बैठने का स्थान ही नहीं था, नदी बह रही थी उसमें पत्थर पड़े हुए थे, दादी को बोला दादी आप यही बैठेंगी, जहां बिठाओ जैसे बिठाओ जो खिलाओ, इतना सरल, इतनी निरहंकारी, भगवान का प्रत्यक्ष प्रूफ दादी की सकल, दादी का व्यवहार था। हम उनको अलग कर ही नहीं सकते, कभी भी चले जाओ ऐसे दृष्टि दिया चेहरे पर ऐसे लगता, इतना रुहाब, इतनी रूहानियत, जैसे बाबा सदा ही इनके तन में बैठा हुआ है। आवाहन करते थे तब तो स्पेशल दिखाई देता था, अनुभव होता था, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत उनके सामने कभी चले गए अकेले में और दृष्टि ऐसे दी तो यही अनुभव हो जाता था, मुझे बाबा ने दृष्टि दी है, दादी ने दृष्टि नहीं दी। आप समझ सकते हैं उस आत्मा ने कितना गहराई से उस अंतर्मुक्ता का अभ्यास किया होगा, उनकी दृष्टि में और उनकी वाणी में इतना जौहर था, इतनी शक्ति थी। जो एक दिन की बात और सुनाता हूं, हम पिकनिक पर 2 गाड़ियां लेके निकले पांडव भवन से पीस पार्क के लिए, तो दादी जी की गाड़ी आगे आगे थी, उसमें एक भाई को बिठाया था, 3 बहनें थी, दादी थी, और पीछे हम 6-7 भाई थे गाड़ी में। उस समय की गाड़ियां तो अलग प्रकार की थी, तो जो भाई चलाता था, अचानक एक सामने से गाड़ी आई और आपस में, दादी की गाड़ी तो निकल गई आगे लेकिन जिसमें हम बैठे थे वो गाड़ी अचानक टकरा गई, और इतनी जोर से टकराई लेकिन गाड़ी पलटी नहीं। तो हम लोग तो शांत थे लेकिन जो सामने वाले थे वो इतना हंगामा इतना शोर करने लगे, मेरे को मार दिया, मेरे को ये कर दिया। और उनको पता था कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, कुछ हंगामा करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो सारे के सारे हमारी गाड़ी के आगे लेट गया करके, जितने उस गाड़ी में थे दूसरी गाड़ी में। और इतना शोर इतना हंगामा, चिल्लाएं रोएं। और दादी जी को पता चल गया कुछ हुआ है पीछे। दादी जी ने अपनी गाड़ी मुड़वाई, चलो पीछे। अब दादी जी आई पीछे, गाड़ी खड़ी की और चुपचाप उतर गई। गाड़ी से उतरी और जितने लेटे हुए थे शोर कर रहे थे, दादी ने इतना प्यार से स्नेह भरी दृष्टि दी और बहनों को बोला टोली ले आओ। भैया उठो, कहाँ चोट लगी है, कोई बात नहीं, उठो इलाज करवा देंगे आपका। वो चुपचाप इतना शांत हो गए दादी की दृष्टि से। दादी ने इतना प्यार की दृष्टि दी और दो शब्द ही बोले, भैया कहाँ लगा है, चलो हम आपका इलाज करा देंगे। सब चुपचाप टोली लिया दादी सॉरी ऐसे करके और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। उनका योग, उनकी तपस्या, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि में वो शक्ति थी, खड़ी हो गई, असंभव भी संभव हो जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य हो, जो संकल्प किया, जो बोल दिया, हो गया, सोचने की जरूरत नहीं। ऐसी पावर, ऐसी शक्ति उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में। कभी भी दादी को देखो, कभी भी मिलने जाओ। एक दिन बाबा आए थे मेडिटेशन हॉल में, बाबा आए थे और उस समय एक सिस्टम बनी थी कि ग्रुप के 8-10-15 लोग बाबा के सामने खड़े होकर के बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा की वाणी सुनेंगे खड़े होकर के सामने। तो ऐसे ग्रुप खड़ा था और उसमें एक भाई को कुछ जोश में क्या आया पता नहीं था और ऐसे खड़े खड़े दादी के ऊपर गिर गया, बाबा के ऊपर गिर गया, बाबा थे। और गिरा इतनी जोर से जो हाथ पर पूरा ही उसका शरीर का सिर का लोड आ गया। जब तक हम लोग उठाएं, जब तक दौड़े क्या हुआ कैसे हुआ, तब तक तो हो चुका था। बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्चे को उठाओ, बच्चे को उठाओ। मैं इतना ही बोला बच्चे को उठाओ। अब उसको उठा तो दिया लेकिन हम लोगों को पता चला कि शरीर तो फिर भी शरीर है, इतनी जोर से गिरा चोट लगी होगी। तो हमारे पास एक बहन थी नर्स, वो गई दौड़ के कुछ दवाई लेके आई। लेकिन बाबा इतना प्यार से मुस्कराया और साड़ी के पल्लू के नीचे अपना हाथ ऐसे छिपा दिया, हाथ ऐसे छिपा लिया और फिर वाणी चलाने लगा। फिर मिलना हो गया, ग्रुप आने लगे, एक के बाद ग्रुप मिलते गए। लेकिन हाथ निकाला नहीं बाबा ने, ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही वाणी चलाई। अब दादी जब विदाई लेके कमरे में गई, बहुत दर्द हुआ, बहुत बड़ी चोट लगी थी। तो रात को नींद नहीं आई तो डॉक्टर को बुलाया। तो सवेरे दादी ऐसे पट्टा बांध करके बाहर निकली, ऐसे क्लेम लटका देते ना ऐसे। तो मैं दादी के सामने आ गया, दादी आज पट्टा आपने क्यों बांधा है। तो कहती है अरे क्या बताऊं, जब मैं शाम को बाबा के पास गई कुछ भी नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, और जब बाबा चला गया उसके बाद इतना दर्द हो रहा है, बात मत पूछो क्या हुआ। मैं हम लोगों से पूछती क्या हुआ, मैं दादी ऐसा था कि ऐसे एक भाई अचानक आपके ऊपर बाबा के ऊपर गिर गया था। कहती उठाया क्यों नहीं, मैं जब तक उठाऊं तब तक तो लग गई थी आपको चोट। माना बाबा का आना इस शरीर का कोई भी भान नहीं, इतनी शक्ति सर्वशक्तिवान की जो उसने प्रकृति के पांचों तत्वों को फुल अपने कंट्रोल में किया था, यह शक्ति है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, है शक्ति ऐसी, कुछ भी शरीर को हो जाए, कितना पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, कोई तो हाय हाय करने लगते हैं। हमारी दादियों ने कभी हाय शब्द मुंह से नहीं बोला। कल भी बाबा कह रहे थे हाय हाय नहीं बोलो, क्या करो, फ्लाई करो। तकलीफ नहीं थी, शरीर की बीमारी नहीं थी, हिसाब किताब नहीं था। जब बॉम्बे में दादी थी, गुलजार दादी की बात करता हूं, तो एक दिन हम मिलने गए, अचानक गाम देवी सेंटर पर थी। दादी बोलना बंद कर दिया, बोलती नहीं थी, दृष्टि जरूर देती थी बहुत प्यार से। तो बहुत देर तक दृष्टि ली, हमने कहा दादी कुछ तो बोलो, आप बाबा की तरफ से कुछ शब्द बोलो जो मैं लिख के सबको भेजूं। दादी ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराई थोड़ी सी और ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए जैसे बाबा दृष्टि दे रहा है। शारदा बहन थी, हम थे बॉम्बे, ऐसे देर थोड़ी देर तक बाबा से दृष्टि ली। उन्होंने ठीक है नहीं बोलते हैं, कोई हर्जा नहीं। बाद में हम चले आए तो बाद में नीलू बहन को बुला के बोलती है, वो चले गए क्या? बोले दादी आप बोलती नहीं हो तो चले गए ना, और क्या करेंगे। फिर दादी से एक प्रश्न किया, नीलू बहन ने पूछा कि दादी आप ये खिड़कियों की तरफ सदा देखती रहती हैं, कोई से बोलती नहीं है और सदा ही ऐसे दृष्टि देती रहती खिड़कियों की तरफ, क्या है, क्या करती हैं आप? तो दादी ने दो शब्दों में बोला, तुमको पता है बहुत सी आत्माएं वायुमंडल में भटक रही हैं, वो बाबा से मुक्ति लेने के लिए आती हैं, मैं उन्हें दृष्टि देती हूं, उनको मुक्ति देती हूं। ये सेवा अंतिम समय में दादी ने की। एक स्थान पर बैठ करके सब बातों से उपराम होकर के न्यारे प्यारे बन करके कितनी आत्माओं को उसने, उस आत्मा ने इतनी मुक्ति गति सदगति दी होगी। हम लोग समझते बीमार हैं, हम लोग समझते हैं कोई कर्म भोग है, उनको भोगना तो लगी नहीं कभी भी, कोई भी भोगना कोई भी पीड़ा का अनुभव नहीं किया, कभी हाय शब्द नहीं बोला, सदा मीठा बाबा प्यारा बाबा बस। तो दादी गुलजार जी की जितनी विशेषताओं का वर्णन करें, हर शक्ति से संपन्न थी, दृष्टि वाणी कर्म व्यवहार, उनका उठना बैठना चलना, जो कुछ हम सब बाबा की अव्यक्त मुरलियों में सुन रहे हैं, उन सब का वो प्रैक्टिकल स्वरूप थी। बाबा कई बार कहते हैं मेरे बच्चे मेहनत करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा का कहना और दादी को प्रैक्टिकल देख लो, कभी भी उनके चेहरे से, उनके बोलने से, उनके व्यवहार से ये अनुभव नहीं हुआ कि दादी कोई मेहनत कर रही है। इतनी नेचुरल बाबा के प्यार में समाई हुई। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत नहीं करो, मोहब्बत में रहो। मोहब्बत प्यार ऐसी चीज है जो मेहनत हो तो भी मेहनत से मुक्त कर देता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग लगाने वाले नहीं हो, तुम्हारी जीवन योगी जीवन है। दादी की जीवन योगी जीवन थी, भले वो हम लोगों के साथ योग करती थी, योग लगाती थी, लेकिन वो सदा ही बाबा मैं होकर के रहती, बाबा की लगन में मगन होकर के रहती। कभी भी उनका योग टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया। अचानक हम लोग कई बार जाते थे, और एक बात और सुनाता हूँ, जब कोई बहुत विशेष संदेश लाना होता, दादियां कहती है संदेश लेके आओ, तो कई बार मैंने देखा गुलजार दादी बैठे बैठे ऐसे ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में बैठे बैठे ही संदेश लिखना शुरू कर देती थी, और संदेश लिखती थी तो वहां की बातें कैच करे और यहां उंगली चल रही है, लेकिन लिख लेती थी तो राइटिंग बिगड़ जाती थी। उसके बाद फियर करने बैठती थी तो बहुत टाइम लगता था, दो घंटा चार घंटा एक पेज को फेयर करने में उनको बहुत टाइम लगता था। तो बार बार मेरे को नीलू बहन कहे आप दादी से ले जाओ आके कागज, ये तो बैठ जाती दो घंटा चार घंटा संदेश लिखते। तो मैं आ जाता दादी आपने क्या लिखा है मुझे दे दो, तुम पढ़ लेगा मेरी राइटिंग? हाँ दादी मैं पढ़ लूंगा। और मैं लेके जाता उसको टाइप करके ले आता रफ लिखा हुआ, और वो रफ लिखा हुआ कागज जब टाइप करके लाता तो दादी को बोलता दादी कोई करेक्शन है तो बता दो। कहती तुमने मेरी बात को बाबा की बात को भी कैच करके लिख दिया क्या? इतना बाबा ने दादी के द्वारा जो सेवाएं कराई हैं। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे फोन किया और मैं कहीं गुजरात के टूर पर था, मैंने बताया नहीं क्योंकि फोन पर तो पता नहीं चलता। तो दादी ने कहा राजू तुम कहाँ है, संदेश एक लिखा है मैंने इसको फेयर करना है। मैंने कुछ नहीं बोला, हमने कहा दादी ऐसा करो आप, मैं भाई भेजता हूँ आप दे दो। वो भाई को फोन किया मैंने कि जाओ संदेश ले आओ। संदेश लिया दादी से लेके गया तो एक जो सिंधी जानने वाला भाई है उसको मैंने बोला तुम फेयर करा दो। अब उसने टाइप करवा दिया, फेयर हुआ, टाइप करके वो दादी के पास लेके गया। दादी ने पढ़ा, पढ़ते ही कहती है ये राजू ने नहीं किया है, किसने किया है? वो कहाँ है उसको बुलाओ। मैं तो था ही नहीं, मैं गुजरात में था। कहती तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? ना दादी मैं तो बहुत दूर बैठा हूं लेकिन काम न रुके इसलिए मैंने किया। माना वो एक एक बात को बहुत सेंसियरली बहुत एक्यूरेट, कोई भी मुरली का शब्द अगर मुझे समझ में नहीं आया कोई भी शब्द मैं टाइप कर रहा हूं डायरेक्ट, बाबा यहां चला रहा चाहे जिस स्पीड में चलाए उंगलियां चल रही हैं। कल देखा होगा ना दो तीन बार दिखाया था टीवी पर, कोई शब्द मान लो मिस हो गया। और दादी मुरली के बाद जब कमरे में जाती थी तो मैं उसी समय उनके हाथ में मुरली देता था, और मुरली पढ़ते ही अगर कोई शब्द नीचे ऊपर हुआ फट से बुलाएगी राजू आओ इधर, ये शब्द गलत है, यहां ये नहीं है, यहां ये होना चाहिए। कितनी कैचिंग पावर, टचिंग पावर। शिव बाबा बोल के गए, दादी को कुछ पता नहीं मुरली क्या चली, लेकिन जब पढ़ रही है दोबारा तो उनको बार बार याद आ रहा है जैसे कोई स्वप्न में कोई बात देखी हो सुनी हो, और उस बात को फट से कहेंगे ये शब्द यहां ये नहीं होगा यहां ये होगा। इतना ध्यान जाता था। तो स्वच्छता जो कल बाबा कह रहे थे परमात्म संग में रहने वाले बच्चों को रंग लगता है, तो मैंने अनुभव किया वो रंग सबसे पहला लगा गुजरात दादी को जो 48 साल निरंतर बाबा के संग में ही रही। भले कुछ समय साकार में हम सबसे बाबा मिले लेकिन बाबा ने उस रथ को निरंतर यूज किया और सदा ही उनके संग में रह करके दृष्टि वृत्ति स्मृति सब कुछ बिल्कुल प्योर शुद्ध बना दिया। वो प्योरिटी की शक्ति थी, उसके आधार से सब शक्तियां उनके अंदर आती गई, सरलता मधुरता नम्रता उदारता हर चीज में नंबर वन बन गई। तो ऐसी हमारी दादी गुलजार जिन्होंने मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता है, सब शक्तियां अपने जीवन में धारण करके हम सबके सामने अपने जीवन का सबूत दिया। और हमें तो बहुत बड़ा भाग्य मिला खाने में घूमने में मुरली उनके द्वारा महावाक्य लिखने में सब कुछ साथ में रह करके किया। और ऐसी आत्मा जो अभी बाबा के साथ अव्यक्त वतन में है आज उनके अव्यक्त लोक में हम जाते हैं, कितने अच्छे वाइब्रेशन हैं उनकी हाजिरी का अनुभव करते हैं। तो आप सभी कल तो होंगे ही, जो न हो एक बार कुछ मिनटों के लिए भी अव्यक्त लोक में जरूर जाना, आपको उनकी हाजिरी का अनुभव होगा, उनकी शक्तियों का अनुभव होगा। उनका कमरा भी योग रूम बना दिया गया है जहाँ बाप दादी का बहुत अच्छा फोटो है, कमरे में भी ऐसे सुंदर तपस्या के वाइब्रेशन हैं। तो आप सब भले बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त रूप से अव्यक्त पार्ट भी बाबा का पूरा हुआ, लेकिन उनकी हाजिरी। और तो मैं तो ये सोचता हूँ ये त्रिमूर्ति दादियाँ, हमारी दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी हृदय मोहिनी गुलजार दादी, ये तीनों दादियाँ इस यज्ञ को चला रही हैं, यज्ञ को बढ़ा रही हैं। सूक्ष्म रूप में उनकी हाजिरी का यहाँ हम सब अनुभव करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं मधुबन में गया और मैं खाली हाथ आ गया। सब भर के जाते हैं। आप सब भर गए ना, अच्छे तरह से भरपूर हुए। ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा कहाँ मिला, भले वीडियो चल रही थी, लेकिन कई बाबा के बच्चे इतनी दूर बैठे भी अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे संकल्पों का भी उत्तर दे रहे हैं। और विशेष कल की ये प्रेरणा रही है, आप सबने अंडरलाइन किया होगा कि अभी समय आ रहा है प्रकृति के पांचों तत्व जो बहुत तंग कर रहे हैं, तंग हो चुके हैं, तंग कर रहे हैं, इनको सकाश देने का, मनसा द्वारा सकाश देना है। और उसके लिए हम सब अंडरलाइन करें, उसी शक्ति का प्रयोग करें जो मनसा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो। कोई भी दृश्य देखो, कैसी भी बातें देखो, सिर्फ प्रश्न नहीं उठाओ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये जो काका वाले प्रश्न हैं यही व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति कर देते हैं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे सब प्रश्नों से पार अपनी प्रसन्न चित्त स्थिति में रहें। और कोई भी बात आती है, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। संकल्पों को जितना कंट्रोल करने की शक्ति है उतना सब सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती रहेंगी। जिस बाबा के बच्चे ने अपने संकल्प पोल इन दोनों शक्तियों को बचाया है, वो अंत समय में बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में उपस्थित रहेंगे। बाबा उनसे बहुत बड़ा सेवा कराएगा, हमारे फरिश्ते स्वरूप से सेवा होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे साधारण रूप में इधर उधर की बातें सोच करके, इधर उधर के शब्द बोल करके अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं करो, इनको बचाओ। ऐसी बचत की स्कीम बनाओ, वायदा करो, कुछ भी हो, कैसी भी सीन आए, मुझे हलचल में नहीं आना है। एक साक्षी दृष्टा, दूसरा फुल स्टॉप। ये दोनों गुण हमारी दादियों में थे, वो सदा साक्षी होकर के रही और फुल स्टॉप लगाया, हलचल में नहीं आई। कितनी भी बड़ी बातें हुई, किसी के आगे वर्णन नहीं किया, ये हुआ, वो हुआ, इसने ऐसे कहा, वहां ऐसे हो गया, जो अच्छा बाबा बैठा है सब ठीक कर देगा, इतना निश्चय बाबा में, एक बल एक भरोसा, बाबा बैठा है सब ठीक हो जाए, तुम क्यों सोचता है। हम कभी कभी पत्र लेके जाते थे, सारे पत्र मेरे पास, अब लिखना है, जवाब देना है, तो पूछेंगे तो कभी भी जाओ दादी ऐसी बात है, क्या करना है, क्या लिखना है, अरे अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट लिख दो दादी, ये बात का उत्तर, अरे नहीं सब ठीक हो जाए, बाबा बैठा ठीक कर देगा, इतना पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। ये अभी थोड़ी बहुत होती बातें, बाबा कभी भी बच्चों के वर्तमान स्थिति को नहीं देखता, बाबा बच्चों के भविष्य को जानता है। इन्हीं बच्चों को मैंने देवता बनाया था, आज ये किसी संस्कार के कारण युद्ध कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, लेकिन बनेंगे तो यही। बाबा का इतना संपूर्ण निश्चय है कि मेरे यही बच्चे बने थे, बनेंगे, बन रहे हैं, हम क्यों संशय बुद्धि हो जाएं। तो सभी एक दूसरे की बातों को, संस्कारों को समझते हुए कितना प्यार से बाबा ने एक अंडरलाइन किया बात को, बच्चे माला तो नंबर वार ही बनेगी, लेकिन माला में पिरो गया, विजय माला में आ गया, तो जरूर संस्कार मिलन की रास की होगी। माला के दाने की क्या विशेषता है? माला का दाना दाने के समान होता है। अगर एक का छेद बड़ा हो, एक का छोटा हो, एक मोटा हो, एक छोटा हो, तो माला में पिरोएंगे? नहीं पिरोते। छेद भी समान है, रूप में भी समान है, लेकिन समानता होते हुए भी एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, डिटैच है। साथ है लेकिन अटैच नहीं है। हम सब साथ रहें, सेवाएं करें, सबके सहयोगी बन करके रहें, लेकिन संस्कार मिलन ऐसे न हो जाए जो अटैचमेंट हो जाए, मोह हो जाए, और संस्कार का टकराव ऐसा न हो जाए दो दूरियां बढ़ जाएं। माला में वही पिरो जाएंगे जो समान हैं, अटैच नहीं हैं, डिटैच भी हैं और साथ में भी हैं। तो ऐसे दादियों ने करके सिखाया है, और हम सभी अपने बड़ों की पालना, बाबा की पालना का अभी सब मिलकर के क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। रिटर्न जाने के पहले बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ तो रिटर्न करो। तो जो कुछ बाबा ने दिया है, अब हम सबको मिलकर के अपने चेहरे से, चलन से, व्यवहार से, अपनी वाणी से बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। पल पल को आबाद